أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود البقرة آية 26 یہ آية جس کا میں نے آج انتخاب کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت یاد کر یا وہ ایک بہت ہی اہم وقت تھا جب ہم نے بیت اللہ کو بڑی نو انسان کے آنے کی جگہ کرایا دور دور سے جن کرانا اور اپنا مقصود بیت اللہ کو بنانا یہ قرار دیا وہ امنا اور اس جگہ کو امن کی جگہ قرار دیا وتخذوا من مقام ابراہیم و مصلی اور ابراہیم کے مقام پر اپنی نمازوں کی جگہ بناؤ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو دونوں مل کر پاک رکھیں گے تاکہ دور سے آنے والے طواف کی خاطر آئیں یا وہاں مسجد میں اعتکاف کی خاطر آئیں یا رکوع و سجود کی خاطر آئیں ان کو میرے گھر میں پاکیزگی کے سوا کچھ اور دکھائی نہ دے یہ تشریحی ترجمہ ہے اس آیت کا سب سے پہلے تو میں وتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں خانہ کعبہ کے پاس ایک مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے بس اس آیت کا عمومی مفہوم یہی لیا جاتا ہے اور اسی مفہوم پر اتفاق کی جاتی ہے کہ جب بھی حج پر لوگ پہنچیں اس مقام پر نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمازیں پڑھی اس مفہوم کے درست ہونے سے کوئی انکار نہیں لیکن اس میں اس سے بہت اعلیٰ درجہ کا مفہوم بھی اس میں اس سے ایک بہت اعلیٰ درجہ کا مفہوم بھی شامل ہے جس کا تعلق تمام بنی نوع انسان سے ہے جہاں بھی وہ خدا واحد کی پرستش کرتے ہوں جہاں بھی وہ نمازیں پڑھتے ہوں वो इस आयत की इस आयत के इर्शाद की तामील करने के अहल हैं। अहल जब मैं कहता हूं तो मुराद है उनकी ताकत में है कि इसकी तामील की कोशिश करें। जहां तक मरतबे के लिहाज से अहलीत का ताल्लुक है, एक बहुत ही बड़ा मुतालबा है जिसको पूरा करने का हर इंसान मकसद नहीं रखता। मुराद ये है कि इब्राहिम ने जिस अंदाज से नमाजें पढ़ी, जो मुकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने में खुदा के हजूर हासिल था, उस मकाम को अपनाने की कोशिश करो। जिस तरह कामिल वफा, कामिल इल्हा, कामिल अताअत, कामिल वफादारी के साथ अपनी तवज्जो को खालिसतन अल्लाह के लिए करते हुए, अपने वजूद का कोई हिस्सा भी बाकी न छोड़ते हुए, अपनी रजा, अपनी आरजुओं को यकनजर नजरअंदाज करते हुए, कुल्लियतन अपने वजूद को खुदा के सामने पेश करते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुकाम इबादत से खड़े हो जाया करते थे, उसको नमूना पकड़ो। वो मकाम हासिल करने की कोशिश करो इबादत में। वो अहिदना इला इब्राहिम व इस्माइला, और इब्राहिम और इस्माइल दोनों से हमने यह अहद लिया कि तुम मेरे घर को आने वालों, तवाफ करने वालों, इतकाफ करने वालों, रुकू करने वाले और सजूद करने वालों के लिए पाक रखोगे। जो दूसरा पहलू है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है और तमाम बनी नौ इंसान के लिए अहमियत का हामिल है। इसके भी दूसरे पहलू की तरफ इसके अंदर भी दो पहलू मौजूद हैं। एक तो है खाना काबा को साफ और पाक रखना, और दूसरा है जो तमाम बनी नौ इंसान से ताल्लुक रखता है और उन सबको एक सफाई और पाकिजगी की तालीम दी गई है। क्योंकि खाना काबा को जब मसाबतन लिन्नास करार दिया और अमन करार दिया, तो खाना काबा को हर इंसान के लिए एक बेहतरीन मॉडल करार दे दिया। मसाबतन में ये मजमून भी दाखिल है कि वो उसे एक मतमय नजर बनाकर उसकी तरफ चले आते हैं। वो नमूना है तमाम बनी नौ इंसान के लिए, बेहतरीन घर का नमूना। घर में जो सबसे आला सिफात होनी चाहिए वो दो बयान फरमाई गई हैं। अव्वल तौर से अव्वल घरों में इबादतें होनी चाहिए, दोयम हर घर को अमन हासिल होना चाहिए, और स्वयं हर घर साफ और पाक होना चाहिए। तंजीम के तौर पर बैतुल्लाह से उतरते हुए सबसे पहले हमारा फर्ज है कि हम अपनी मस्जिद को पाक और साफ रखें। जहां कहीं भी वो मस्जिद वाकया हों, उनको उनकी सफाई, उनकी पाकीजगी, उनकी जाहिरी जीनत का भी ख्याल रखें। जहां तक जीनत का ताल्लुक है, कुरान करीम में एक दूसरी और आयत में ये इरशाद फरमाया गया कि हर सजदागाह के लिए अपनी जीनत लेकर हाजिर हुआ करो, जीनत इख्तियार करके सजदागाहों की तरफ आया करो। तो जो शख्स खुद जीनत का महल ना हो, वहां जीनत लेके जाना एक बेमहल बात है, बेमौका बात है। तो उस मजमून में ये बात भी दाखिल हो गई कि मस्जिदें मुजयन होनी चाहिए, साफ सुथरी, पाकीजा, नजर को भाने वाली और दीगर जेब। इस पहलू से मैं समझता हूं कि जमात अहमदिया को अभी बहुत ज्यादा तवज्जो दिलाने की जरूरत है। जहां तक मसाजिद का ताल्लुक है, इसके साथ डिजाइन में तो कुछ किसी हद तक ये इजाजत दी जा सकती है कि कौम में अपने मनशा, अपने लिजाज के मुताबिक उसकी तस्वीर बनाएं, उसके मुताबिक उसका ढांचा तैयार करें। जिस रंग में भी कौमें पसंद करती हैं इमारतों के नक्शे, अपनी पसंद की झलक अपनी मसाजिद में भी दिखाने की कोशिश करें। इस हद तक तो कोई इतराज की बात नहीं, लेकिन सफाई के मैार के लिहाज से हर कौम की मस्जिद का सफाई का मैार मुख्तलिफ हो, ये बिल्कुल इस्लामी तालीम के खिलाफ बात है। जब भी बैतुल्लाह का जिक्र चलेगा और बैतुल्लाह के नमूने पर कायम होने वाली दीगर عبادت گاہوں کے کا مضمون سامنے آئے گا تو صفائی اور پاکیزگی کے مضمون اس کے ساتھ اس طرح لازم ہے جیسے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. اور نمونہ خدا تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا اور پھر مسجد کی خدمت کو کے مقام کو ایسا اعزاز بخشا ہے کہ اس سے بڑا اعزاز کسی مقام کی صفائی کے متعلق انسان کے تصور میں آ ہی نہیں سکتا. ہمارے ہاں معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ قاضی مسجد وہ ایک معاشرے کی ایک معمولی سی چیز ہے. بالکل جھوٹا اور لغت تصور ہے. جماعت کو اس تصور میں اصلاح کرنی چاہیے. خادم مسجد کا تو اتنا عظیم شان مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندو ابراہیم اور اسماعیل کے سپرد مسجد کی خدمت کی تھی اور ان سے عہد لیا تھا کہ تم میرے گھر کی صفائی کے لیے نوکروں کی طرح حاضر رہا کرو. اللہ کے گھر کی صفائی ہو اور اس میں یہ خیال کہ ہم نے خادم مسجد کے سپرد یہ ذمہ داری کر دی ہے اور وہ چند پیسوں کے اوپر غریب آدمی جس کو اور کوئی ملازمت کی جگہ نہیں ملتی, بوڑھا ہو گیا ہے, گزارے کی اور صورت نہیں, وہ مسجد کی صفائی کر دیا کرے اور جیسی بھی کر دیا کرے ٹھیک ہے. یہ قرآن کریم کی اس آیت کے مضمون سے ٹکرانے والا عمل ہے, اس سے متصادم ہے اور جماعت کو فوری طور پر اس معاملے میں اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے. تمام عالم میں جہاں جہاں بھی جماعت کی مساجد ہیں وہ غریبانہ تو ہو سکتی ہیں, اس پر کوئی اعتراض نہیں. ایسی غریبانہ بھی ہو سکتی ہیں کہ گھاس پھوس کی فرش ہو اور پانی ٹپکے اور زمین پختہ نہ ہو, لیکن صفائی کے معیار سے ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. آنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی کسی نے بھی یہ غریبانہ مسجد بنائی ہے, اپنی تمام جان اور تمام استطاعت کے ساتھ اس نے کوشش کی ہے کہ یہ گھر صاف اور ستھرا اور پاکیزہ دکھائیے. اس بات کا جماعت کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور رنگ میں بھی پیدا ہوتا ہے. ایک موقع پر پاکستان میں, تو 20-25 سال کے قریب کی بات ہے, میں نے ایک مسجد کو نہایت ہی گندی حالت میں دیکھا. کوئی جگہ نہیں ملتی تھی ایسی جہاں اطمینان سے انسان سجدہ کر سکے. ہر طرف تنکے بکھرے ہوئے, خاک اڑتی اندر آتی تھی, کسی نے کوشش کی تھی کہ اس کو سوا کر کے باہر پھینکے. اور جماعت کے آپس میں جہاں تک اتحاد اور اتفاق اور محبت کا تعلق ہے, اس کو بھی اسی حال میں پایا. چنانچہ میں نے ان کو توجہ دلائی. میں نے کہا آپ اگر مسجد کی عزت نہیں کریں گے اور مسجد کے لیے پوری کوشش کر کے, اس وقت میں یہ مثال تو نہیں دی لیکن جس حد تک بھی مجھے خیال آیا, میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا کے گھر کا جو تصور آپ کے ذہن میں ہے اس کے مطابق اس کو سجانے اور زینت دینے کی کوشش نہیں کریں گے تو بعید نہیں کہ آپ کے دل اسی طرح پھٹے رہیں اور آپ کے اوپر جو بدحالی کی تصویر بنی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ خدا کے گھر کے معاملے میں اپنی توجہ کو درست کریں, اپنی نیتوں کو صاف کریں. چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جلدی تو اس بات کا اثر نہیں ہوا, مگر جب بھی ہوا چند سالوں کے بعد اس جماعت کی حالت بھی بدل گئی. ساتھ ایک جگہ نہیں دیکھا میں نے, دو جگہ نہیں, بارہا دوروں کے وقت میں نے محسوس کیا کہ جو جماعتیں مسجدوں کی طرف توجہ دیتی ہیں ان کی اپنی حالت بھی اسی شان کے مطابق درست ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک براہ راست نسبت رکھتی ہے. جو جماعتیں اپنی مساجد سے غافل ہو جاتی ہیں ان کے اندر پراگندگی آ جاتی ہے, بدحالی کی کیفیت دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور پھر یہاں تک کہ ایک دوسرے سے منتخب ہو کر بسا اوقات ایک دوسرے کی دشمنیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ زائد فائدہ ہے جو جماعت کو حاصل ہوگا اگر ہر جگہ مساجد کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے تو ان شاء اللہ تعالی جماعت کی عمومی حالت پر اس کا بہت ہی اچھا اثر پڑے گا. اس سے اگلا مقام ہے زینت بخشنے کا. جہاں جہاں ممکن ہے وہاں مسجد کو پھولوں سے سجانا چاہیے, ارد گرد کیاریاں لگائی جائیں, جہاں جہاں ایسے ساتھ صحن موجود ہیں جن کو سجایا جا سکتا ہے سائے کا انتظام کرنا چاہیے. احمدی مسجد باقی تمام دنیا کی مساجد سے اس لحاظ سے امتیاز اختیار کر جائے کہ دولت کی بھرمار وہاں نظر نہ آئے مگر خلوص اور محبت, صفائی اور پاکیزگی کی صورت میں اس مسجد پر ہمیشہ نشاور ہو رہا ہو. نظر پڑے تو محسوس کرے کہ ایسے لوگوں کی مسجد ہے جو خدا کی عبادت سے محبت رکھتے ہیں, جو اپنے گھر پر خدا کے گھر کو ترجیح دینے والے ہیں. اس کے برعکس ایک ایسی بھیانک شکل اور بھی نظر آتی ہے کہ اپنے گھر سجانے والوں کی مسجدیں بھی برے حال میں ہوتی ہیں. بعض ایسے علاقے ہیں جہاں گھروں کی طرف بڑی توجہ دی جاتی ہے, سبن اور فطرتن ان کو شوق ہے کہ گھر اچھے رکھے جائیں, لیکن اس کے باوجود مسجد کی حالت زبو ہوتی ہے. اس کو اندر جائے انسان تو محسوس ہوتا ہے جس میں کچھ تاریخی کا سایہ ہے, اندر جا کر اطمینان سے بیٹھنے کا لطف نہیں آتا. تو امید رکھتا ہوں کہ اس طرف بھی خصوصیت سے توجہ دیں گے, کیونکہ ملت واحدہ بنانے کے پروگرام میں اس کو بھی ایک بڑی اہمیت آتی ہے. ہم اس صدی کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں جہاں بڑے نیک عزم لے کر ہم داخل ہونے والے ہیں. ان عزائم میں سے ایک عزم یہ تھا کہ ہم تمام بنی نوع انسان کو ملت واحدہ بنانے کے لیے ایک نمونے کی جماعت پیش کریں گے جو ملت واحدہ کا نمونہ خود ہو, تاکہ دوسروں کو اسی شکل و صورت کے اوپر ملت واحدہ بننے کی دعوت دے رہی ہو. مساجد کو ملت واحدہ بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرنا ہے, کیونکہ مساجد کے اور پہلو بھی ہیں. نمازوں کی طرف میں پہلے توجہ دلا چکا ہوں, باجماعت نماز کی طرف, عبادت کا معیار بلند کرنے کی طرف. اس پہلو سے میں دوبارہ اس مضمون کو نہیں دہراتا, لیکن خود مساجد کے معیار کو اور مساجد کے متعلق جماعت کے رجحان کو بھی ملت واحدہ کے مضمون سے گہرا تعلق ہے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ دنیا میں ہر جگہ جماعت کی مساجد صفائی اور پاکیزگی کے اعتبار سے خانہ کعبہ کے اس معیار کو اپنا نمونہ بنائیں گی. مساجد نمونہ بنائیں گی, جب میں کہتا ہوں تو مراد ہے جماعتیں ان کو نمونہ بنائیں گی. تو ہماری مساجد بھی انشاءاللہ آئندہ خانہ کعبہ کے اس معیار کے نمونے پر پورا اترنے کی کوشش کریں گی جس کا اظہار اس آیت میں فرمایا گیا ہے. اور دوسرا پہلو میں دوبارہ یاد کراؤں کہ مسجد کی خدمت کے اعزاز کو ہم نے قائم کرنا ہے. بہت سی ایسی مساجد دنیا میں ہیں جن میں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے, اور بڑے بڑے خادم مسجد وہاں ہمہ وقت مستعد رہتے ہیں کہ مسجد کے کونے کونے کو صاف ستھرا رکھیں. جماعت احمدیہ کی مساجد میں جو امتیاز ہونا چاہیے وہ یہ کہ دنیا کے لحاظ سے جو اونچے مرتبے پر فائز کیے گئے ہیں ان کو عزت میں فضیلت دی گئی ہے. دیگر عزتوں کے لحاظ سے جن کو اپنے دوسرے بھائیوں پر ایک اعزاز بخشا گیا ہے, وہ مسجدوں کی صفائی میں ذاتی حصہ لینے کی کوشش کریں, اور اس بات کو خاندان اپنا اعزاز سمجھیں کہ وہ وقف کرتے ہوں کہ آج کا دن ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اس مسجد کی صفائی کریں. اور بڑے اور چھوٹے کی تفریق اس معاملے میں نہ ہو, بلکہ وہی بڑا ہوگا خدا کے نزدیک جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو. چنانچہ اس آیت کا وہ بھی ایک رنگ میں مستاق بن جائے گا. تو مساجد بھی مستاق بن رہی ہوں اور مسجدوں کی خدمت کرنے والے بھی اس آیت کا مستاق بن رہے ہوں, تو ایک بہت ہی پاکیزہ اور دلفریب تبدیلی جماعت کے اندر محسوس ہوگی. اس کا تیسرا پہلو ایک اور ہے کہ جب خدا کے گھروں کا ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا تو ہمارے گھر بھی تو اسی نمونے کے مطابق صاف ستھرے اور پاکیزہ ہونے چاہیے, اور ہمارے اندر صفائی کی عادت پیدا ہونی چاہیے. اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں ابھی جماعت کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. عمومی جائزے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفائی ایک قومی خلق بن گئی ہے اور دینی خلق مل گئی. پاکستان کے احمدی کی صفائی کا معیار علاقے علاقے سے مختلف میں مختلف ہوتا چلا جاتا ہے. ہندوستان کے احمدی کے گھروں کی صفائی یا پاکیزگی کا معیار بھی علاقے علاقے میں مختلف ہوتا چلا جاتا ہے. یورپ کے احمدیوں کا معیار اپنے علاقے سے مناسبت رکھتا ہے. امریکہ کے احمدیوں کا معیار اپنے علاقے سے مناسبت رکھتا ہے. بنگلہ دیش کے احمدیوں کا معیار اپنے علاقے سے مناسبت رکھتا ہے. حالانکہ اسلام نے صفائی کو دین کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحیح معنوں میں کوئی انسان دین کو سمجھتا ہو اور دین کے لحاظ سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو تو وہ صفائی کو اپنے دینی عوامل کا حصہ نہ بنائے. پس جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہمارے یورپ میں بسنے والے احمدی بڑے اچھے اور صاف ستھرے ہیں, امریکہ میں بسنے والے صاف ستھرے ہیں. کیونکہ وہ اگر صاف ستھرے ہیں تو ان کو یہ صفائی احمدیت یعنی حقیقی اسلام سے نہیں ملی بلکہ اپنی عادات کے نتیجے میں ملی ہے. اور جو صفائی ملی ہے اس میں بھی بڑی خامیاں ہیں, کیونکہ قومی صفائی کے تصور دینی صفائی کے تصور سے پوری طرح مطابقت نہیں کھایا کرتے. ہمارے ہاں جو پاکی ناپاکی کا ایک مضمون ہے وہ ان قوموں کی صفائی میں داخل نہیں ہے. نہایت گندی اور غلیظ چیزیں بھی بعض گھروں میں آپ کو دکھائی دیں گی اور اس کے باوجود وہ گھر صاف ستھرے ہیں. شیشوں کی طرح چمکتے ہوئے گھروں میں کئی قسم کی گندگیاں بھی نظر آتی ہیں لیکن ان کی ان کو پرواہ نہیں ہے. تو جب ہم اسلام کے نقطۂ نگاہ سے صفائی کی بات کرتے ہیں تو مراد ہے وہ صفائی کا تصور جو قرآن نے پیش فرمایا, جو حضرت عبدالس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اور آپ نے اسے دین کا حصہ بنا دیا ہے. چنانچہ ابھی مالک الاشری ابو مالک الاشری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, انہوں نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان, مسلم کتاب الطہارہ. کہ ابو مالک الاشری روایت کرتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے, اسے ایمان سے الگ قرار نہیں دیا جا سکتا, اسے ایمان سے الگ قرار نہیں دیا جا سکتا. اس پہلو سے احمدی کے گھر کی صفائی بھی اس کے ایمان کے ان فرائض میں داخل ہو جاتی ہے جو ایمان نے اس فرائض کی, اور تمام دنیا کے احمدی کے گھر کی صفائی اسلام سے حاصل کردہ تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کی صفائی بھی امت وحدہ پیدا کرنے میں بہت حد تک ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہے. اگر اس تعلیم پر تمام احمدی دین کا حصہ سمجھتے ہوئے عمل کریں تو ساری دنیا میں خواہ غریب گھر ہوں یا امیر گھر ہوں, غریب ملکوں کے گھر ہوں یا امیر ملکوں کے گھر ہوں, وہاں صفائی کا وہ معیار ضرور قائم ہو سکتا ہے جو اسلام نے عائد کیا. کیونکہ اسلام نے جو بھی صفائی ضروری قرار دی اس پر پیسہ نہیں لگتا, اس پر توجہ درکار ہوتی ہے. ایک صفائی والے مزاج کی ضرورت ہے, غیر معمولی یا معمولی بھی خرچ کی ضرورت نہیں, ادنا سے ادنا غریب انسان یعنی مالی نقطۂ نگاہ سے جسے ہم ادنا کہہ سکتے ہیں, اور اعلیٰ سے اعلیٰ امیر ترین انسان بھی اسلامی صفائی کی تعلیم میں برابر ہو سکتے ہیں. یہ بھی اسلامی مساوات کا ایک عجیب حصہ ہے. پس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفائی کی تعلیم دی اس کو ہمارے گھروں میں بھی منعقد ہونا چاہیے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بھی خوب کھول دیا ہے کہ صاف ستھرا رہنا, دیدہ زیب لباس اختیار کرنا اور عموماً اچھا نظیف انسان بن کر معاشرے میں ظاہر ہونا, اس کا براہ راست کبر سے تعلق نہیں ہے. किबर का मजमून और है और सफाई का मजमून और है। अच्छे कपड़े पहनना किबर की निशानी नहीं है। चुनाचे एक मौके पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी किब्र पाया जाता हो। सुनने वालों में से एक के दिल में यह खौफ पैदा हुआ कि बाज़ लोग अच्छे कपड़े पहनकर निकलते हैं, सज धज कर बाहर आते हैं, कहीं ये तो नहीं कि नऊज़ बिल्ला वो भी जन्नत में चले जाएंगे क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहनते हैं और उनके दूसरे भाइयों से नुमाया दिखाई देते हैं। चुनाचे उन्होंने मौजूद तौर पर यह सवाल किया और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, इंसान चाहता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, उसका जूता अच्छा हो। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जलील है और जमाल को पसंद फरमाता है। तकब्बुर तो हक का इनकार और लोगों को हकीर जानना है। ऐसी हैरत अंगेज सफाई के साथ आपने तकब्बुर का तजिया कर दिया है कि उसके बाद किसी के लिए किसी गलतफहमी का इम्कान ही बाकी नहीं रहना चाहिए। दो किस्म के अच्छे कपड़े पहनने वाले बाहर निकलते हैं। एक वो जब वो कपड़े पहने हों तो यूं मालूम होता है कि वो कपड़ों में गिरफ्तार हो गए हैं, कपड़ों के गुलाम बन गए हैं, कपड़े उन पर सवार हैं बजाय इसके कि उन्होंने अपनी जरूरत के लिए कपड़े पहने हैं। वो क्रीज का दिमाग में ऐसा ख्याल होता है कि बैठते हैं तो बहुत ही एहतियात के साथ तेजी से हरकत नहीं करेंगे कि उनके कपड़ों की सलवट में फर्क न पड़ जाए। मामूली सा किसी बेचारे का हाथ लग जाए मैला तो भटकते हैं उसको नफरत के साथ। छोटा बच्चा एक दफा कभी प्यार के साथ उनके हाथ लगा ले तो उनके चेहरे की चेहरियां देखें, वो इतने भी अखलाक नहीं बाकी रहते कि छोटे बच्चे ने गलती से हाथ लगाया है उसके गुस्से का इजहार न करें। ये सारी बातें तकब्बुर के पस मंजर की निशानदेही करती हैं। नमाज पढ़नी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। सजदे में जाते हैं तो हर वक्त ये ध्यान कि मेरी सलवार या मेरी पतलून की सलवटें खराब न हो जाए। यहां से हजरत अगस्त मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बारीक नजर से अपने गुलामों को देखा करते थे और ऐसी बारीक नजर से तरबियत फरमाया करते थे। इस मौके पर आपने फरमाया कि जब सजदे के लिए जाने लगो तो अपने कपड़े में समेटा करो। दो शक्लें हैं कपड़े समेटने की, एक तो ये कि वो रुकावट पैदा करता हो। ये मुराद नहीं है कि उस रुकावट को दूर ना करो क्योंकि उससे तवज्जो बढ़ती है। मुराद ये है कि तवज्जो कपड़ों की तरफ न किया करो। इन दो चीजों में एक बड़ा नुमाया फर्क है। अगर एक शख्स कपड़ों की तरफ तवज्जो रखने की वजह से समेटता है तो वो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुकन की खिलाफवर्जी करता है। अगर एक शख्स इसलिए समेटता है कि कपड़ों की तरफ तवज्जो ना रहे, कहीं कपड़ों की तरफ तवज्जो ना रहे, कहीं फंसा हुआ है, कहीं ऐसी मुश्किल पैदा कर रहा है कि सजदे में तवज्जो कायम नहीं होती और दिमाग में यही बात रहती है कि फलां जगह मेरी सलवार इस तरह अटक गई है कि मुझे तकलीफ पहुंचा रही है या मेरी पतून इस तरह अच्छी हुई है कि मुझे तकलीफ पहुंचा रही है। ऐसे मौके पर उस तकलीफ को दूर करना तवज्जो खुदा की तरफ मबजूल करवाने की खातिर। ये आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुनासिब नहीं है। बस आपने जब ये फरमाया कि तकब्बुर हक का इनकार और लोगों को हकीर जानना है तो साथ ही एक ही किस्म का लिबास पहनने वालों के अंदर भी एक तकरीर का समान पैदा फरमा दिया। बैन ही एक ही तरह का लिबास पहनने वाले दो आदमी आपको मिल सकते हैं जिनमें एक तकब्बुर के नतीजे में पहन रहा हो और एक इस वजह से कि खुदा ताला ने उसके लिए जीनत का सामान पैदा फरमाया है और खुदा ताला ने मौका दिया है कि साफ सुथरा हो। अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। और एक शख्स जब बाहर निकलता है तो जिसके कपड़े उससे कमजोर हों, उससे खराब हों, वो उनको इस नजर से देख रहा होता है कि ये तो कुछ नहीं, इसका तो सूट पता नहीं कहां से सिलवाया हुआ है पागल ने, जिस जल्दी से सिलाया उसको सूट सीना ही नहीं आता, साड़ी का रंग देख लो वो इसके कमीज के साथ मैच नहीं कर रहा, जुराबें इसके सूट के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, उसकी नजर हर वक्त इसी ध्यान में पड़ी रहती है कि फलां के कपड़े ऐसे हैं, फलां के कपड़े ऐसे हैं, और अपने कपड़ों के मुतालिक ये एहसास से बरतरी कि देखो मेरे कैसे उनका कपड़े हैं। इस मामले में हमारी खवातीन की बहुत तरबियत की जरूरत है। चुनाचे जब वो मजालिस में जाती हैं तो वापस आकर अक्सर उनकी गुफ्तगु यही होती है कि फलां के कपड़े देखे थे कैसे थे, फलां के कैसे थे, फलां के कैसे थे। इस मजमून में एक तो दिलचस्पी इस लाइन में भी हो सकती है कभी तौर पर कि किसी के अच्छे कपड़े पसंद आए हों और बातें हो गई, लेकिन इससे बढ़कर बात इस मजमून पे अक्सर चलती है कि वो क्या सब बेढंगा जोड़ा पहना हुआ पड़ती है, उसको तो रंगों का ही नहीं पता, उसका जो काम था वो इस किस्म का था, उसके बनावट बेढब थी, इस किस्म की बातें करके तो वो लुत्फ उठाती है, और लुत्फ उठाने के साथ ही आहरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तारीफ की रद में आ जाती है कि तकब्बुर को लोगों को हकीर जानना, अच्छे कपड़े पहनने के नहीं, उनके अच्छे कपड़े जमाल की हद से निकलकर एक मकरूह दायरे में दाखिल हो जाते हैं। वो जिस तरह खुदा के बंदों को तहसील से देख रहे होते हैं ऐसे लोग अपने अच्छे कपड़ों की वजह से, उनके कपड़ों पर खुदा की तहसील की नजर पड़ रही होती है, ये मुतकब्बिर लोग हैं, इनके कपड़ों की कोई हैसियत नहीं। तो एक ही जैसे कपड़ों में हजरत अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत ने कितना नुमाया फर्क करके दिखा दिया। ऐसे बेसाख्ता आप जवाब दिया करते थे और इतनी गहराई होती थी उनमें कि जब हम उसका मुतालिया करते हैं तो आशिक हो जाता है दिल उस अजीम शान वजूद का। छोटे से छोटे मामले में हैरत अंगेज बारीकी के साथ आपकी नजर तमाम उन मुहर्रिकात पर पड़ती थी जो नियतों के पीछे कार फरमा होते हैं। बस तकब्बुर को छोड़ते हुए, उससे बचते हुए, उससे इंतहाई कोशिश के साथ एतराज करते हुए अपने अंदर, अपने घरों के अंदर जीनत पैदा करने की भी कोशिश करें, और जीनत आपकी सफाई की उस तरह हिफाजत करेगी जिस तरह नवाफिल फराइज की हिफाजत करते हैं। जिन लोगों को जीनत की आदत हो जाती है वो सफाई के अजमा मेयार पर निस्बतन ज्यादा आसानी के साथ पूरा उतरते हैं, क्योंकि जीनत सफाई से आगे एक नफरी कदम है। जितना ज्यादा आप जीनत की तरफ तवज्जो करेंगे, इन शराइत के साथ जो मैंने बयान की है, उतना ही सफाई खुद ब खुद आप उस सफाई का मैार खुद ब खुद ऊंचा होता चला जाएगा। बस घरों में सफाई पैदा करना, अपने लिबास अपने जिस्म में सफाई पैदा करना, और हसल मकदूर कोशिश करना कि उनमें जीनत पैदा हो, और जीनत भी बहुत किसी गैर मामूली हद को नहीं चाहती। हर इंसान अपने हालात के मुताबिक जरा सी भी कोशिश करे कि जीनत का कोई ना कोई रंग इख्तियार कर सकता है। मैंने देखा है गरीब कौमों में भी बाजों में जहां जीनत की तरफ तवज्जो है वो लिपाई ऐसी साफ सुथरी करती हैं, यानी उनकी औरतें, कि उनके घर सजे हुए नजर आते हैं। ऐसे देहात गरीब देखे हैं मैंने जहां मिजाज में जीनत पाई जाती है, उनके खलियान भी सजे हुए होते हैं, उनके घरों के सहन साफ सुथरे और पाकीजा, और उनके वो गोबर और मिट्टी से की हुई लिपाई का मैार ही ऐसा अच्छा होता है कि इंसान खड़े होकर देखता है और नजर लगत महसूस करती है। तो जीनत भी गुर्बत में इख्तियार की जा सकती है, मिजाज में जीनत की सलाहियत होनी चाहिए। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की वस्ती में तमाम दुनिया की जमातों को अव्वल अपने बयूत का मेयार बहुत बुलंद करना चाहिए। सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज अल्लाह का घर होना चाहिए किसी महल्ले में, किसी शहर में, और सारी जमात को उसको साफ बाकीदा रखने में और उसे जीनत बख्शने में हिस्सा लेने की इस तरह कोशिश करनी चाहिए कि अगर हिस्सा मिले तो अपना एजाज समझे, अगर हिस्सा ना मिले तो महरूमी समझे। इसी तरह अपने घरों को भी खुदा के घरों के नमूने के मुताबिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग जो बाहर से आएंगे और आने वाले हैं कसरत के साथ, जब भी वो एमपी घरों में दाखिल हों तो उनको महसूस हो कि ये इस्लामी घर हैं और हर दुनिया के एमपी घर में एक कदर मुश्तरक पाई जाए, यानी पाकीजगी, सफाई, जीने। बाद कौमों में वाकयतन ये इसी रंग में इस मजमून को समझा गया है और घरों की तरफ इसी तरह तवज्जो दी जाती है, लेकिन मशरकी कौमों में अक्सर इस तरह तवज्जो नहीं है। मेरी मुलाकात स्विट्जरलैंड के दौरे पर एक बॉस्निया के मुसलमान से हुई और उनके घर जाने का मौका मिला। इससे वो पेश आए, जमात अहमदियों से मुतलिक भी बे इंतहा मोहब्बत का इजहार किया और अमलन अभी बैत तो नहीं थी, लेकिन हर पहलू से अपने नजरियात में, अपने मिजाज में, अपने रुझान में वो एमजी हो चुके हैं। जब मैं दौरे से वापस आया तो वल्ले इंजाज से मिले और बड़ी माजरतों के बाद उन्होंने कहा कि मैं हर तरह से उनसे मिलकर खुश हूं, राजी हूं, हर बात से इतफाक है, लेकिन एक मुझे छोटा सा शुक्र है, मुझे भी समझ नहीं आती कि ये क्यों हुआ ऐसा वाक्य। उन्हें क्या बात क्या है? उन्हें क्या बात यह है कि जब वो मेरे घर आए थे तो बूट उतारे बगैर घर में दाखिल हो गए थे। उन्होंने कहा इसी का बात है कि सारा यही होता है यहां, ठीक है, आपके यहां यही होता है। इस्लाम ने तो घरों की सफाई का ऐसा मैार मुकर्र किया है कि हमारे बॉस्निया में तो कोई शख्स भी जो मुसलमान हो बूटों समेत घरों में दाखिल नहीं होता। और वजह यह है कि हम समझते हैं कि घर का चप्पा चप्पा ऐसा होना चाहिए जहां सजदा किया जा सकता हो जाए, और बहुत बुरे हाल तक वो लोग पहुंच गए, लेकिन इस मैार को आज भी उन्होंने कायम रखा हो। इस सिचुएशन से तो मेरा दिल आश्चर्य था। मैंने उनसे कहा काश सब जगह हमारे यहां यही रिवाज बन जाए कि ऐसे घर पाकीजा रखे जाएं कि गोया उसके चप्पे चप्पे पर सजदा हो सके, लेकिन ये मैार हासिल करना बहुत मुश्किल काम है और बैनी घर के हर हिस्से को ऐसा बनाना हम पर फर्ज नहीं है, क्योंकि पुरानी कलीम और अहादीत से पता चलता है कि घर के बाद हिस्सों को वक्त करने के लिए। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत खुलकर बयान फरमाया, बार बार वजाहत से फरमाया कि घरों में एक ऐसा हुजरा होना चाहिए, एक ऐसी अलग जगह होनी चाहिए जहां जाकर तुम बातें करो और खुदा की तरफ बात तवक्कुल अख्तियार करो। बच्चे होते हैं, बच्चों की आदतें मुख्तलिफ, और फिर काम भी हमारे यहां बहुत होते हैं। इसके अलावा बाद घरों में माशाल्लाह 7-8 बच्चे पैदा हो जाते हैं, अब वहां किस तरह वो औरत बेचारी निपटेगी कामों से कि वो घर का मैार ऐसा बुलंद रख सके, लेकिन बहरहाल जो रख सकते हैं उन्होंने कमाल कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। काबिल तारीफ हैं वो लोग जिन्होंने सफाई के मैार को इस इंतहा तक पहुंचा दिया कि उनके घरों में हर चप्पे पर सजदा हो सकता है, वो मस्जिद बन गई, कि जहां मुमकिन है वहां जमात के लिए भी कोशिश करनी चाहिए, यानी मतमय नजर बुलंद कर रहना चाहिए। एक और बात घरों की सफाई के सिलसिले में कहकर अब मैं इस रूल को खत्म करूंगा कि घरों की सफाई अमूमी आदात की सफाई से गहरा ताल्लुक रखती है। जो लोग गंदे मिजाज के हों वो घर कैसे साफ रखेंगे? इंसानी मिजाज मुनसिब होता है घरों में, इसलिए जब कहते हैं घरों की सफाई रखो और उनको पाक नमूना बनाओ, तो जाहिर बात है कि आपके शख्सी आदात को भी साफ होना होगा और नमूना बनना होगा। अपने मिजाज में सहजगी पैदा करें, साफ और सुथरा बदन रहन रखने की आदत डालें, और जहां तक मुमकिन है गरीबाना कपड़े भी हों तो धोकर, बार बार धोकर उनको पहना जाए। एक गरीब घर के मुतालिक मुझे किसी ने बताया, हमारी इंतजाम में से किसी ने इतला दी कि वो गरीब, बहुत गरीबाना उनका गुजारा था, लेकिन अच्छे वक्तों से उनके अंदर ये आदत चली आ रही थी जिसे उन्होंने आखिर वक्त तक बड़ी उम्दगी के साथ कायम रखा, उसकी हिफाजत की, कि जब भी घरों में बच्चे वापस आते थे तो आते ही वो कपड़े बदलते थे, दूसरे घर के कपड़े पहनते थे और रोजाना अपने कपड़े धोते थे खुद, और उनको लटका कर सूखने के लिए, फिर वो नहाकर फिर खाना खाया करते थे। बड़ी मुश्किल आते हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हैं बहुत आला और पतीजा जिन लोगों ने ये आदतें अख्तियार की जा सकती हैं वो बेशक करें, लेकिन कम से कम मेरा आपको नहीं गिरना, ये तो सारी जमात पर फर्ज है। देखने में साफ हो, बोलने में उनकी सफाई हो, उनकी आदत में उनके मिजाज में सफाई हो, घर अच्छे और पाकीज़ा हों। लेकिन एक आखिरी तंबीह मैं यूं करूंगा कि घरों की सफाई के नतीजे में गलियां ना गंदी करें, इसका आपको हक नहीं है। ये अच्छी आदत की बजाय एक बुरी आदत मजहर बात है। बाज हमारे पाकिस्तान में ऐसे कस्बे हैं जिनके अंदर घरों की सफाई का मैार बहुत बुलंद है, शीशे की तरह चमक रहे होते हैं और गलियां इतनी गंदी कि बदबूएं और गलाजतें उनकी नालियों में बहती हैं और हर चीज गंदी बाहर सड़कों पर फेंकी हुई। ये बेचारे इनके जिसमों पर खारिश, वो गलियों में जहां जहां बैठे वो खारिज करते हुए आपको दिखाई देंगे, किसी जगह आधी जेल, किसी जगह पूरी जेल, मगर बाल उड़े हुए, नहायत मकरू मंजर इनकी गलियां देख सकती हैं। इसलिए बीमारियां भी बहुत ज्यादा हैं, मच्छी भी है, गंद भी है, लेकिन कौमी आदत है घर साफ है, घरों को खूब साफ रखते हैं, मांझते हैं, अपना गांधी सोसाइटी के स्कूल कर दिया, इसका किसी एनजी को कोई हक नहीं। अपना गंद अपने घर से दूर करके कौम को स्पुर्द नहीं करना, यानी कौम के ऊपर नहीं फेंकना, बल्कि उसकी हिफाजत का इंतजाम करना, जहां अच्छी म्यूनिसिपल कमेटियां हैं वहां तो ऐसे इंतजाम होते हैं सहूलत के साथ कि गंदगी को डब्बों में बंद किया जा सकता है। जहां नहीं है और अहम भी गांव है वहां उनको इस पर सहयोग करनी चाहिए, तो मिलकर ऐसा इंतजाम करें कि घरों का गंद बाहर गलियों में न फेंका जाए, घरों की गंदगी नालियों में न बहे, जहां तक मुमकिन है उसको इस बुराई को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कौमी इंतजाम ना भी हो तो घरों को अपने तौर पर कुछ ऐसी जराए अख्तियार करनी चाहिए कि वो एक नेकी को अख्तियार करते हुए एक बड़े जुर्म का शिकार ना हो जाए। कौम के जो हकूक हैं वो अफराद के जाती हकूक पर कई पहलुओं से फौफियत रखते हैं, उनमें एक ये भी है कि अपनी सफाई को कौम का गंद बनाने का किसी को हक नहीं। इसलिए या तो कौमी तौर पर उस मिलकर वकार अमल के जरिए ऐसे इंतजाम किए जाएं, या फिर कोई अपने घरों में ऐसे बड़े डब्बे रख ले कि वक्तन फवक्तन उसके खाली करने की कोशिश की जाए घर वालों की तरफ से, क्योंकि ऐसी जगह जहां गंदगी के लिए ढेर मुकर किए जाते हैं। तो इन सब बातों की तरफ तवज्जो करें। मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह अगली सदी से पहले इस तरह से भी हम एक उम्मत वाहिदा बनने की कोशिश करेंगे और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक नहायत पाकीज़ा साफ से साफ उम्मत वाहिदा के तौर पर जाहिर होंगे। अल्लाह करे कि हमें इसकी तौफीक अता हो। Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله। आज भी जुमे के साथ असर की नमाज जमा होगी क्योंकि अभी तक बाहर से आने वाले मेहमानों की कसरत है और उनके लिए तकलीफ का मुझे होता है कि जोर के बाद वापस जाएं, ये बहुत दूर दूर जगह हैं, फिर वो वापस उसके लिए तकलीफ लाएं। तो इसलिए आज के दिन में इसके साथ भी इंशाल्लाह असर की नमाज जमा की जाएगी। कल तक देखा जाएगा, अगर मुमकिन हुआ तो जोर और असर की नमाजें अलग कर दी जाएंगी और जब तक मगरिब और इशा में जरूरत महसूस होगी बाहर से आने वाले की कसरत की वजह से, वहां उनका ज्यादा हक है जरूरत पैदा करने का। तो वो देखने में इंशाल्लाह कर कि कब तक करना है आंदा नमाज असर के बाद जो जमा होंगी, नमाज जनाजा होगी चंद मरहूमीन की, जिनके नाम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। नमाज जनाजा गायब एक हकीम कुरैशी नजीरा में साहिब अमीरपुर दवाखाना जो हाजमून वालों के वाले के नाम से मशहूर थे, बहुत से दोस्त उनको जानते हैं, कि आज 72 साल की उम्र में आप वफात पा गए हैं। हमारे हिंदुस्तान की जमात के बहुत ही मुखलिस सैयद खादिम हमीद अहमद लालपुरी के पुत्र थे। मुकर्रम नजीर इलाही साहिब जो पिट्सबर्ग के प्रेसिडेंट थे अमरीका में, उनके मतलब भी अब्दुल रशीद का मुगल वाशिंगटन में वफात की तला दी है, नवाज नवाज की वफात की है। मुकर्रमा अमतुर रहीम साहबा सऊदी गुलाम रसूल साहब मरहूम की देवा थी, अचानक दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गई। गुलाम मुस्तफा जफर सऊदी जमात नहीं दिया डिग्री जिला सरकार की वालदा थी। कल उन्होंने मुझे मुलाकात के दौरान बताया कि जैसे तक तीस आए थे तो अचानक उनकी वालदा की वफात की खबर मिली। की तौफीक अता फरमाए। तालिया बेगम अहलिया चौधरी फजल अहमद साहब मरहूम भोपाल वाला जिला सियालकोट वफात पा रही हैं। चौधरी फजल अहमद साहब मरहूम अमीर जमात साबिक अमीर जमात अहमदिया कराची व सिंडिकेट ऑफ सिंह सिंडिकेट में काम किया करते थे और अमीर जमात अहमदिया कराची भी रहे हैं किसी जमाने में। इन सब की इंशाल्लाह नमाज असर के मान बाद नमाज जनाजा होगी। عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.